नमस्कार भारत, 17 जुलाई बुधवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा में ट्रंप के बयान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित।
The president's comments about our colleagues this weekend show that he does not share।
झारखंड में कुरान दान करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देंगी छात्रा ऋचा पटेल।
अभी मेरे पास लिखित तौर पे आया नहीं है कि जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे पास अधिकार है ना कि हम आगे जा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि इससे तो मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है।
जानेंगे नागालैंड में इंडिजिनस रजिस्टर से क्यों परेशान है गैर नागा लोग।
पूरा भोजपुरी समाज इस लड़ाई में इनके साथ है, पर इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन सिटीजंस हैं उनको हैम्पर ना हो, ताकि उनको इस प्रोसेस में किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो।
लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, गुरप्रीत सैनी से। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की निंदा की गई है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 काली महिला सांसदों से कहा था कि वो अपने देश वापस लौट जाएं। उनकी इन टिप्पणियों को नस्लवादी कहा जा रहा है और इसके लिए ट्रंप की काफी निंदा हो रही है। उर्जुला फोन डे लायन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। वो जर्मनी की रक्षा मंत्री भी रही हैं। यूरोपीय संसद के सदस्यों ने उन्हें 9 वोटों के बहुत कम अंतर से अध्यक्ष चुना। उर्जुला जियांग क्लोडे औंग की जगह लेंगी, जिनका कार्यकाल अक्टूबर के अंत में खत्म हो रहा है। उर्जुला फोन डे लायन ने सभी पक्षों के साथ मिलकर काम करने की अपील की है। इससे पहले उन्होंने संसद की शक्तियों को बढ़ाने और ईयू की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कुछ नेताओं ने शिकायत की थी कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के वादे को वो निभा नहीं सकी। चुने जाने के बाद उर्जुला फोन डे लायन ने यूरोपीय संसद के सदस्यों से कहा,
आई फील सो ऑनर्ड एंड आई एम ओवरवेलम्ड एंड आई थैंक यू फॉर द ट्रस्ट यू प्लेस्ड इन मी।
मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ, जो भरोसा आपने मुझ में दिखाया मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने जो भरोसा मुझ में दिखाया है वो यूरोप को लेकर आपका विश्वास है, वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक फैले एक जूट और मजबूत यूरोप में आपका भरोसा है। यूरोप में आपका भरोसा भविष्य की लड़ाई लड़ने को तैयार है। इस विश्वास से हम मिलकर मौजूदा वक्त की बड़ी चुनौतियों से निपटेंगे। ये थे उर्जुला फोन डे लायन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका में ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों को लेकर किसी भी देश से बातचीत नहीं करेगा। अलीरेज़ा मीर यूसुफी ने बयान ट्विटर पर जारी किया। दरअसल इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करने को तैयार है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि तनाव को कम करने की कोशिशों में प्रगति हुई है। उन्होंने कहा था, काफी प्रगति हुई है और वो बात करना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है, लेकिन काफी प्रगति हुई है। हम उनकी मदद करना चाहते हैं, हम उनके साथ अच्छे से बात करेंगे, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो कोई परमाणु हथियार नहीं रख सकते। हम शासन में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा है कि हम शासन में परिवर्तन चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अमेरिका ने म्यांमार के 4 शीर्ष जनरल पर प्रतिबंध की घोषणा की है। अमेरिका के मुताबिक इन जनरलों ने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन किए। जिन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनमें म्यांमार के कमांडर इन चीफ मिन ओंग लाइंग भी शामिल हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का कहना है कि ये पहला उदाहरण है जब किसी देश ने बर्मी सेना के सबसे वरिष्ठ सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। पोम्पियो ने कहा कि ये सैन्य अधिकारी रखाइन प्रांत में हत्याओं समेत कई तरह के अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। अमेरिका के न्याय विभाग का कहना है कि एक काले आदमी एरिक गार्नर की मौत के मामले में किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। 5 साल पहले जब पुलिस एरिक को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी तो उन्हें गले से पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एक वीडियो में वो बोलते दिख रहे हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। उनकी मौत के बाद देश में गुस्सा भड़का और ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से आंदोलन की शुरुआत भी हुई, लेकिन सरकारी अभियोजकों का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि जिस पुलिस अधिकारी ने एरिक का गला पकड़ा उन्होंने जानबूझकर कानून तोड़ा। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। अमरीकी संसद की प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक सांकेतिक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसका खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने समर्थन किया है। दरअसल ये प्रस्ताव ट्रंप की कथित नस्लवादी टिप्पणियों की निंदा में पारित किया गया है। ट्रंप ने 4 डेमोक्रेटिक महिला सांसदों से कहा था कि वो जिस देश से आई हैं उन्हें वहीं लौट जाना चाहिए, जबकि ये महिला सांसद अमरीकी नागरिक ही हैं। हालांकि ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि वो नस्लवादी व्यक्ति नहीं है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए गुरप्रीत सैनी से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो नस्लवादी नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट कर ये बात कही है। दरअसल उन्होंने 4 नॉन वाइट डेमोक्रेट महिला सांसदों को अपने देश वापस लौट जाने के लिए कहा था। इसके बाद ट्रंप की टिप्पणियों के खिलाफ प्रतिनिधि सभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मतदान से पहले प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दोबारा ट्रंप की टिप्पणी की निंदा की। उन्होंने कहा,
The president's comments about our colleagues this weekend show that he does not share those American values.
इस सप्ताह राष्ट्रपति ने हमारे सहयोगियों पर जो टिप्पणी की वो दिखाती है कि वो अमरीकी मूल्यों को साझा नहीं करते हैं। व्हाइट हाउस से आई ऐसी टिप्पणी शर्मनाक है और नस्लवादी है। वो उन शब्दों का बचाव करते हैं जो अपमानजनक हैं। उनसे बार बार ऐसे शब्द सुनना शर्मनाक है। और वो न केवल हमारे सदस्यों को ऐसा कहते हैं बल्कि कईयों को ऐसा कहते हैं। हमारा दल हमारे सदस्यों पर लगातार ऐसे होते हमलों का मजबूती से जवाब देगा, जो मौलिक अनादर के अधिकार को दिखाता है और यही अमेरिका की विविधता की खूबसूरती है। राष्ट्रपति के शब्दों के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। ये थे प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शब्द। ये विवाद रविवार से शुरू हुआ। ट्रंप ने उस दिन सबसे पहले ट्वीट किए जिसके निशाने पर अमरीकी संसद की 4 महिला सांसद थी। ट्रंप ने इन 4 महिला सांसदों को, जो अमरीका की ही नागरिक हैं, उन्हें अमरीका का दुश्मन बताया और कहा कि उन्हें ज्यादा दिक्कत है तो वो यहाँ से अपने देश वापस चली जाएं। ये 4 महिलाएं हैं अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेस, रशीदा तलीब, अयाना प्रेस्ली और इल्हान उमर। दरअसल ये 4 महिला सांसद कुछ दिन पहले अमेरिका के एक प्रवासी डिटेंशन कैंप का दौरा करने गई थी, जिसके बाद उन्होंने संसद की एक समिति के सामने बताया था कि उस डिटेंशन कैंप में रहने वाले लोगों की हालत बेहद खराब है और ये सब अमरीकी झंडे के नीचे हो रहा है। ट्रंप ने इन बातों को खारिज कर दिया था। इसके बाद ट्रंप ने कई ट्वीट किए जिनमें इन महिलाओं का नाम नहीं था, लेकिन इसके संदर्भ को लोग समझ गए। इन ट्वीट्स के बाद ट्रंप की काफी आलोचना हुई। उनकी इन टिप्पणियों को नस्लवादी बताया गया। बात बढ़ने के बाद 4 महिला सांसदों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रंप की टिप्पणियों को ध्यान भटकाने वाला बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये भयंकर अराजकता और इस प्रशासन के भ्रष्ट कल्चर से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। तलीब और उमर ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाए जाने की बात दोहराई है।
डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के खिलाफ संसद में निंदा प्रस्ताव पास। अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां का एक मामला काफी तूल पकड़ते नजर आ रहा है। श्रोताओं, हमने कल नमस्कार भारत में आपको रिपोर्ट सुनाई थी कि फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ विवादित पोस्ट करने वाली ऋचा पटेल नामक छात्रा को झारखंड की एक अदालत ने रिहा कर दिया था, लेकिन उसके साथ ये शर्त लगाई थी कि वो इसके बदले 5 कुरान दान करेंगी। अब ऋचा का कहना है कि वो इस फैसले से असहज महसूस कर रही हैं और वो इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकती हैं। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी समेत कई बीजेपी नेताओं ने ऋचा पटेल की मदद की पहल की है। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की ये रिपोर्ट।
अभी मेरे पास लिखित तौर पे आया नहीं है कि जैसे कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो हम कोर्ट के ऑर्डर का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन मेरे पास अधिकार है ना कि हम आगे जा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हम इससे थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि इससे तो मेरा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ये मौखिक है, अभी लिखित आया नहीं। अगर लिखित आता तो हम लोग अभी चैलेंज करते हैं। अगर दूसरा रास्ता निकलता दूसरा रास्ता ही निकलता।
पोस्ट क्या था आपका जिसको लेके विवाद हुआ?
पोस्ट यही कि गंगा में स्नान करने से प्रज्ञा ठाकुर जैसे पैदा होते हैं, वो वैसे आजम खान बोलता है, तो काबा में पत्थर मारने के वैज्ञानिक नासा के साइंटिस्ट होते हैं, यही सब पोस्ट था। बनाया मेरा नहीं था ये, मतलब शेर बस किए थे, ग्रुप था ना इंडियन मोदी साइंस क्लब, नरेंद्र मोदी, ये सब ग्रुप से हम लिए थे।
यह आवाज रांची वीमेंस कॉलेज की छात्रा ऋचा पटेल की है। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, कोर्ट द्वारा कुरान बांटने के आदेश से वे सहज नहीं है, वे इसके खिलाफ ऊंचे कोर्ट में अपील करने पर विचार कर रही हैं। उनके घर पर कल पूरे दिन मीडिया वालों की भीड़ जमी रही, कई चैनलों पर वे लाइव रहीं और शाम होते होते वे भारत में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करने लगीं। हजारों लोगों ने उनके पक्ष और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं दीं और सैक मनी सिंह हैशटैग के साथ उस न्यायिक दंडाधिकारी के खिलाफ भी टिप्पणियां की गईं जिन्होंने ऋचा पटेल को कुरान बांटने की शर्त पर जमानत दी थी। झारखंड हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट राजीव कुमार इसे बेवजह का विवाद बताते हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
चैलेंज करेगी हाईकोर्ट में, क्योंकि जो उसके ऊपर केस हुआ है ना, वो हुआ है आईटी एक्ट के 66A में। तो आईटी एक्ट में 2 साल की सजा है, तो सजा और क्या सजा देना है जज को, वो जज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो कितना सजा देना है ये निर्भर करता है, लेकिन जज क्या सजा देगा ये कानून में दिया हुआ है। तो ये उसके बियॉन्ड जा करके कि जाके जूता पॉलिश करो, तुम जाके वो क्या बोलते हैं वो गुरुद्वारा में लंगर लगाओ, ये सब काम जज का नहीं है, ये पाकिस्तान में होता है।
इस बीच उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट कराने वाले अंजुमन इस्लामिया के पिठोरिया प्रमुख मंजूर खरीफा ने कहा कि ऋचा पटेल की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार वालों और समाज के प्रबुद्ध लोगों ने उनसे लड़की की छोटी उम्र का हवाला देकर सुलह करने की अपील की थी। इस कारण उन्होंने सुलहनामा लगाया और ऋचा को जमानत मिल सकी। मंजूर खलीफा ने बीबीसी से कहा,
शांति रखने के लिए हम लोग कुछ कमेटी का मेंबर सोचा ग्राम में मेरा शांति बना रहे, आपस में हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले।
अच्छा, तो अभी आप लोगों को जो कुरान की प्रति देनी है वो उन्होंने दिया है कि नहीं?
अभी तक तो नहीं दिया है।
दरअसल रांची के बाहरी इलाके पिठोरिया में रहने वाले ऋचा पटेल उर्फ ऋचा भारती पिछले शुक्रवार से चर्चा में हैं। आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर इस्लाम के खिलाफ कई आपत्तिजनक पोस्ट किए थे। इससे कथित तौर पर माहौल खराब होने का खतरा था। इस कारण अंजुमन इस्लामिया से जुड़े लोगों ने उनके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 3 दिन बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी। हालांकि ऋचा का कहना है कि जिस फेसबुक पोस्ट के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया वह वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी नामक फेसबुक ग्रुप से कॉपी पेस्ट किया गया था। इस बीच भाजपा के कुछ नेताओं ने ऋचा पटेल से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। वहीं विभिन्न हिंदू संगठनों ने भी उनके समर्थन की बात कही है। ऐसे में यह मामला आने वाले वक्त में और तूल पकड़ सकता है। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
झारखंड के बाद रुख करते हैं बिहार का। नेपाल से लगे बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ से स्थिति गंभीर है। अब तक कम से कम 12 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और 33 लोगों के मारे जाने की खबर है। साथ ही असम में भी 33 में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। केरल में भारी बारिश की संभावना है। अगर बात करें दरभंगा जिले की तो उसके निचले हिस्सों में बाढ़ का पानी पहुँच चुका है, लेकिन अभी नेपाल में बारिश से पहले वहाँ की हाल तक स्थिति अलग थी। कभी अपने तालाब और नदियों के लिए मशहूर रहा दरभंगा कई महीने तक भीषण जल संकट से जूझ रहा था। आखिर क्या है इसकी वजह, सुनिए बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट।
बाल्टी बाल्टी लोग भर के रख लेता है, गांव में पिए गांव में पतीला भर के रख लेता है।
यहाँ लगभग 500 घर है और 500 घर के हिसाब से पर घर जोड़ लीजिए 6 परिवार, तो उस हिसाब से एक अच्छी खासी आबादी हो जाती है। और शायद बहादुरपुर का यह इलाका जो स्टेशन से सटा हुआ है लहरियासराय स्टेशन से, यहाँ जल की समस्या सबसे ज्यादा है। यहाँ शायद ही 1-2 चापाकल है जो अभी चालू हालत में है।
दरभंगा के इन लोगों का जीवन अब आसान हो गया है। बीते 4 महीनों में 1-1 बूंद पानी के लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन पिछले दिनों की बरसात के बाद इनके चापाकलों में पानी आ गया है। लेकिन यह हाल कब तक रहेगा इसके बारे में कोई भी ठीक ठीक नहीं बता सकता। दरभंगा हमेशा से पानी के तालाब और नदियों का शहर माना जाता रहा, इसके बाद भी यहाँ पानी का संकट हो जाएगा ये किसने सोचा था। दरभंगा में बीते कुछ सालों में भू जल स्तर लगातार कम हो रहा है। गर्मी आते ही आम चापाकलों में पानी आना बंद हो जाता है। दरभंगा के जिलाधिकारी एम त्यागराजन बताते हैं,
वास्तव में पिछले साल का वर्षा का अगर हम लोग समीक्षा करें तो लगभग 43% वर्षा कम हुआ। उस वजह से 2 से 3 फीट जलस्तर की गिरावट हुई है। कुछ खास जगहों पर ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे शहर हो गया, बहादुरपुर, बेनीपुर, इन क्षेत्रों में दिक्कत हुई है। लेकिन प्रशासन के तरफ से काफ़ी प्रयास रहा है, नगर निगम और PHD का कोऑर्डिनेशन से काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित किया गया।
राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद दरभंगा से आते हैं। वे दावा करते हैं कि नीतीश सरकार की नल जल योजना से घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है।
अभी जो वाटर प्रॉब्लम आया दरभंगा में, अगर ये जल नल योजना नहीं होता, अभी मैं गया था दरभंगा, लोग बताए कि आधा जान बचा है क्योंकि जल नल योजना उनके पास पहुंच गया, इससे पानी मिलने लगा। वो नहीं होता तो और भयानक स्थिति वहाँ पे हो जाती। और सरकार में भी सीरियस चिंता है मुख्यमंत्री का इसको लेकर के, और बहुत सारा इनिशिएटिव, खास करके जल संरक्षण के लिए, वो सरकार के तरफ से भी इनिशिएटिव होगा, सिविल सोसाइटी को भी आना चाहिए।
वैसे नल जल योजना दरभंगा के अधिकांश हिस्सों तक नहीं पहुंची है और इसे पहुंचने में लंबा वक्त भी लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भूजल का स्तर ही गिरता जाएगा तो फिर इस योजना के लिए भी पानी कहाँ से आएगा। दरभंगा में जल संकट की सबसे बड़ी वजह यहाँ के तालाबों और नदियों के जल प्रवाह पर लगा अंकुश है। ऐतिहासिक तौर पर दरभंगा कमला और बागमती नदी के किनारे बसा है। बाढ़ की डर से इन नदियों के पानी को दरभंगा से पहले ही अलग अलग जिलों की तरफ मोड़ दिया गया है। इसके अलावा 1964 के जिला गजेटियर के मुताबिक जिले में 350 से भी ज्यादा छोटे बड़े तालाब थे, लेकिन ये तालाब अब लोगों के अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं, कुछ जगहों पे ये गायब भी हो गए हैं। जिले में तालाब को बचाने के लिए बीते 3 दशक से काम कर रहे नारायण चौधरी ने बताया।
200 तालाब भर दिए गए। इसमें नगर निगम की जबरदस्त भूमिका है, सीओ कार्यालय की भूमिका है और यहाँ एक गिरोह है। असल में है क्या कि ट्रेड कॉमर्स है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, तो ये जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं वो और ए पॉलिटिशियन, तो यहाँ पर किस चीज में पैसा होगा। तो एक तालाब को भर दो, 2-4-5 करोड़ का बिजनेस हो जाता है, तो सारे लोगों को बंदर बांट होती है।
दरभंगा का आम समाज जो नदियों और तालाबों के साथ सदियों से रहता आया है, वह बीते 30-40 सालों में विकास की रफ्तार में इस कदर भाग रहा है कि उसे अपने आस पड़ोस के इन जीवन रक्षक स्रोतों से बहुत वास्ता नहीं रहा। दरभंगा के शहरी क्षेत्र के विधायक संजय सरावगी बीते 15 साल से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतते आए हैं, राज्य में भी उनकी सरकार है। वे तालाबों के गायब होने के मुद्दे पर कहते हैं,
प्रशासन की इच्छा शक्ति चाहिए और प्रशासन की इच्छा शक्ति हो जाएगी। हम विधायिका है, कार्यपालिका प्रशासन है, एक्सक्यूट उनको करना है, इच्छा शक्ति उनकी होनी चाहिए, अतिक्रमण मुक्त भी होगा। और पोखर पर जो रोज रोज जो अतिक्रमण हो रहे हैं, पोखर भर रहा है, उसमें एक दूसरी तरह की समस्या दरभंगा में है। लोग बोलते हैं हमारा निजी है, हम भरेंगे, एक सरकारी पोखर एक निजी पोखर, जिसके कारण कुछ हो सकता है प्रशासन का भी हाथ बंधा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि आप जो है
निजी भी हो तो
तब्दीली नहीं कर सकते हैं, आप उसके जो है संरचना में जैसा वह उसको स्वरूप को नहीं बदल सकते।
पानी के लिए तरस रहे दरभंगा के 35 लाख लोग अब अचानक से बाढ़ और जल जमाव की समस्या की चपेट में हैं। नदियों और तालाबों के रहने से हर साल आने वाली बाढ़ों का असर भी कम होता है और गर्मी के दिनों में पानी का संकट भी नहीं होता। इस बुनियादी बात को दरभंगा के लोग, अधिकारी और नेता जब तक नहीं समझेंगे, तब तक दरभंगा एक त्रासदी से दूसरी त्रासदी की ओर भागते हुए लोगों का शहर बना रहेगा। प्रदीप कुमार, BBC दरभंगा।
अब रुख करते हैं पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड राज्य का, जहां असम के NRC की तर्ज पर मूल निवासियों अर्थात इंडिजीनस लोगों का रजिस्टर तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। साथ ही सरकार ने नागालैंड के सबसे बड़े शहर और वाणिज्यिक केंद्र माने जाने वाले डिमापुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करने की सिफारिशों को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में कई दशकों से यहाँ रह रहे गैर नगा लोगों के सामने कई तरह की परेशानियाँ खड़ी हो गई हैं। सुनिए डिमापुर से दिलीप कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट।
असम की तरह ईसाई बहुल नागालैंड में भी राज्य सरकार ने इंडिजिनस लोगों की एक मास्टर सूची तैयार करने को लेकर बीते 29 जून को एक अधिसूचना जारी की थी। नागालैंड सरकार का कहना है कि वो प्रदेश में जारी हुए नकली स्वदेशी निवासी प्रमाण पत्र की जांच करने के उद्देश्य से नागालैंड के मूल निवासियों का रजिस्टर तैयार करने जा रही है, लेकिन बिना कोई तौर तरीके बनाए सीधे इंडिजिनस लोगों का रजिस्टर बनाने के फैसले से सरकार को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेतृत्व वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस सरकार ने 10 जुलाई से शुरू होने वाली प्रक्रिया को रोक दिया है और 17 जुलाई को सभी नागरिक संगठनों के साथ एक विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई है। नागालैंड सरकार के इस फैसले से खासकर कई दशकों से डिमापुर में बसे गैर नागा लोगों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि कहीं इंडिजिनस लोगों का रजिस्टर बनाने के नाम पर उन्हें बरसों पहले मिला जमीन का अधिकार छीन न जाए। नागालैंड भोजपुरी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष प्रमोद सिंह ने BBC से कहा,
पूरा भोजपुरी समाज इस लड़ाई में इनके साथ है, पर इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइन सिटीजंस हैं उनको हैम्पर न हो, ताकि उनको इस प्रोसेस में किसी तरह का कोई तकलीफ न हो। जैसे कोई व्यापारी है, कोई नौकरी करने वाला लोग हैं, उन लोगों को इस स्टेप से परेशानी ना उठाना पड़े। पैनिक इसलिए हो रहे हैं कि ये इलेबोरेटेड नहीं है अभी तक। इवन गवर्नमेंट इज नॉट श्योर कौन सा मॉडलिटीज में ले जाने वाला है।
दरअसल 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड राज्य के गठन होने से पहले डिमापुर असम का हिस्सा था। उस समय बाहरी राज्यों से आए लोगों को यहां जमीन खरीदने का अधिकार मिला हुआ था। डिमापुर को छोड़कर नागालैंड के सभी जिले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए द्वारा संरक्षित है, जिसमें भूमि का मालिकाना हक केवल इंडिजिनियस लोगों के लिए आरक्षित होता है। लेकिन 1979 में डिमापुर को भी 371 के तहत शामिल कर लिया गया। नागा समुदाय के 30 से अधिक संगठनों को लेकर बनी ज्वाइंट कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट के संयोजक गोखेतो चोपी कहते हैं,
केप तो पहले नहीं था। पहला हम लोग ने शुरू हुआ तो इंक्लूशन आईएलपी डिमापुर का आना चाहिए बोल के हम लोग ने एक मूवमेंट की, इसको डिमापुर को भी इंक्लूड कर दो। हम लोग इसलिए हम लोग ने मूवमेंट किया तो आईएलपी होना चाहिए, ना केप था ना रिन था, क्योंकि हम लोग ने सुना भी है देखा भी है असम में 1 लाख अबव एनआरसी में निकाल गया, तो वो कहा जाएगा अगर नागालैंड में आएगा तो नहीं होगा।
इनर लाइन परमिट व्यवस्था अपने ही देश में एक आंतरिक वीजा की तरह है, जिसके तहत किसी भी अन्य राज्य के व्यक्ति को अनुमति लेकर उस प्रदेश में प्रवेश करना पड़ता है। डिमापुर बंगाली समाज के अध्यक्ष एडवोकेट के पाल मानते हैं कि इनर लाइन परमिट से यहाँ के लोगों को नुकसान हो सकता है।
नागालैंड का डिमापुर जो है सिटी, एक कमर्शियल हब है, इंडिया का हर स्टेट का आदमी इधर में बसा हुआ है। 40-40 ट्रेन अप डाउन होता है डिमापुर का ऊपर से, डिमापुर स्टेशन का ऊपर से। ट्रेन का ऑलमोस्ट 5000 पैसेंजर्स आर जो रन कर रहा है डेली, वो यूज कर रहा है डिमापुर रेलवे स्टेशन। इनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आदमी इधर में रह सके, अपना बिजनेस कर सके, उसका तरक्की कर सके, लेकिन इन्फ्लास उतना ज्यादा नहीं हो जो नागा आइडेंटिटी जो खतरे में पड़ जाए।
केंद्र के साथ शांति वार्ता कर रहे अलगाववादी संगठन NSCNIM ने भी इंडिजिनियस लोगों का रजिस्टर तैयार करने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। NSCNIM ने नागाओं के निहित अधिकारों के लिए सरकार के इस कदम को विरोधाभासी बताया है, लिहाजा रियो सरकार को इंडिजिनियस लोगों का रजिस्टर तैयार करने से पहले इसके तौर तरीके बनाने में काफी सावधानी बरतनी होगी। दिलीप कुमार शर्मा, BBC नागालैंड।
अब जान लेते हैं दिल्ली से छपने वाले अखबार क्या कुछ कह रहे हैं। आज अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरप्रीत सैनी जी। गुरप्रीत बताएं
जी। शाहिद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कुलभूषण जाधव के मामले में आज अपना फैसला सुनाएगा। भारत को काफ़ी राहत की उम्मीद है। भारत अपनी मांग पर डटा हुआ है कि कोर्ट पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को रिहा करने के लिए कहे। साथ ही कोर्ट और भी कई अहम निर्णय दे सकता है। भारत को उम्मीद है कि वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने का दोषी वो पाकिस्तान को ठहराएगा कोर्ट, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को जाधव तक राजनयिक पहुँच देने से इनकार कर दिया था। इसी के साथ एक और भारत के लिए राहत है कि पाकिस्तान ने 5 महीने बाद अपने हवाई क्षेत्र को खोल दिया है, जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से बंद था। इसके बाद से जो फ्लाइट्स हैं वो छोटी हो जाएंगी और जो कीमत है उनकी वो भी घट जाएगी, क्योंकि जो उड़ानें थी उन्हें काफी घूम के जाना पड़ रहा
जी। अब तक मध्य एशिया से और बाकी जगहों से फ्लाइट आने को लेकर बहुत किराया भी बढ़ जाता था और क्या कहते हैं समय भी ज्यादा लगता था। इसी को लेकर नवभारत टाइम्स ने शीर्षक लगाया है, आखिर जमीन पर आया पाकिस्तान, खोला एयर स्पेस
जी। और एक बहुत ही दर्दनाक एक खबर कल आई इंडियन एक्सप्रेस में, उसकी तस्वीर भी है। एक मुंबई के डोंगरी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें 10 लोग मारे गए और 7 लोग घायल हुए हैं, और ये खबर दिख रही है। और इसी के साथ एक चमत्कार भी हुआ है यहाँ पे। एक 3 साल का बच्चा जो अपनी दादी माँ के ने पकड़ा हुआ था, जिसे वो उसे निकाल लिया गया है। साथ ही उसकी एक बहन थी छोटी 3 महीने की, उसको भी उसके पिता निकाल लाए, तो जिन्होंने उसे पकड़ रखा था।
जी,
तो ये चमत्कार कहा
जा रहा है। इसी पे नवभारत टाइम्स ने एक हेडिंग लगाई है कि बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी। मतलब ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में ही एक और खबर है कि कर्नाटक के इस्तीफों पर फैसला आज। जैसे कि कल सुनवाई हुई थी और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, आज 15 बागी विधायकों की जो अर्जी थी उस पर क्या फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, आज पता चल जाएगा
जी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कि जो स्पीकर की जो शक्तियां हैं उसको भी एक बार फिर से देखे जाने की जरूरत है, क्योंकि जो विधायक है उन्होंने कहा है कि इस्तीफा वो लेने के लिए मान नहीं रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी है। इसके अलावा एक और खबर दिख रही है इंडियन एक्सप्रेस में ही कि कांग्रेस में जो प्रियंका गांधी हैं उन्हें अध्यक्ष बनाने की मांग उठ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद अखबारों की समीक्षा के लिए गुरप्रीत सैनी। बढ़ते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में पढ़ना लाखों छात्रों का सपना होता है, मगर यहाँ दाखिला पाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि दाखिले के लिए एक मुश्किल प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है। बात एक बात एक ऐसे ही छात्र की करते हैं जो अब JNU में पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनकी यह कामयाबी कुछ हटकर है। सुनिए BBC संवाददाता सिंधु वासनी की रिपोर्ट।
मेरा नाम रामजल मीणा है। ग्राम पोस्ट बजेड़ा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली, राजस्थान में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है मेहंदीपुर बालाजी, उसी के पास में मेरा गांव स्थित है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से मेरा कभी इंटरव्यू होगा, और मुझे शुरू से ही मैडम में पढ़ने में बहुत होशियार था।
राजस्थान के रहने वाले रामजल मीणा दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में एक सुरक्षा गार्ड है, मगर जल्दी ही वो JNU के छात्र भी होंगे। उन्होंने JNU की प्रवेश परीक्षा पास की है और अब वो वहाँ रूसी भाषा की पढ़ाई करेंगे। गरीबी से जूझते और गार्ड की नौकरी करते हुए ये कामयाबी पाना रामजल के लिए आसान नहीं था।
मैंने मैडम बहुत ही विकट परिस्थितियों में पढ़ाई करी है। 27 अप्रैल 2003 को शादी हो गई थी, उसके बाद में थोड़ा सा मेरे पढ़ाई गड़बड़ा गई थी, क्योंकि पारिवारिक में स्थिति बहुत खराब थी, कमाने वाला कोई नहीं था, मैं अकेला आगे पढ़ाई को जारी नहीं कर सका क्योंकि मुझे इस व्यवसाय सिक्योरिटी में आना पड़ा।
पढ़ाई के प्रति रामजल का जुनून कैसा है ये समझने के लिए इतना जानना काफी होगा कि उनके छोटे से कमरे में कम से कम 2 बोरी किताबें हैं।
मैं हमेशा अपनी एक बुक लेके आता हूँ, कोई सी भी, जैसे मैथ की हुई, रीजनिंग की हुई, GK की हुई, ये सब मैं यहाँ पर पढ़ता रहता हूँ 1-2 घंटा इधर टाइम निकाल के, और बाकी मैं घर भी पढ़ता रहता हूँ। घर पर मेरे पास कम से कम 2 बोरी किताबों के भरे हुए हैं।
8 घंटे की नौकरी करने वाले राजमल रोजाना 10 घंटे पढ़ाई करते थे और खुद की पढ़ाई के दम पर उन्होंने ये परीक्षा पास की।
रोज कम से कम मैं 8-10 घंटा तो पढ़ता ही हूँ मैडम। सुबह के वक्त में 4 से 6 बजे के बीच में ये पढ़ता हूँ। शाम को जैसे ड्यूटी के टाइम अगर टाइम मिल गया, राउंड लगाने के बाद में थोड़ा आधी घंटा मिल गया तो उसमें भी पढ़ लेता हूँ। तैयारी मैडम मेरी वैसे किसी ने मदद नहीं करी, मैं अपनी किताब लेके आता था, सेल्फ स्टडी करता था बस। मैंने जब एग्जाम दे के आया था तो मैंने 68 क्वेश्चन राइट किए थे, तो मैंने जब भी बोल दिया था कि मैं एग्जाम फाइट कर जाऊँगा।
उनकी कामयाबी से पूरे JNU में खुशी का माहौल है। JNU छात्र संघ के अध्यक्ष NSAI बालाजी का मानना है कि रामजल की कहानी ही JNU का असली चेहरा दिखाती है।
इनकी ड्यूटी इसी तरफ रहती थी, या सुबह ये मुझसे मिलते थे या रात को मैं 1:30 जब 1-2 बजे लौटता था तब ये उसी रास्ते में होते थे। हमेशा लाठी खड़े होकर बाला भाई नमस्ते बोलते थे। लोग सच में गार्ड का नौकरी करते हुए रात में चुपके से टॉर्च लाइट के अंदर पढ़ते हुए एग्जाम क्लियर करता है, बहुत अच्छा लगता है दिल से अंदर। और जिनके लिए देश चलना चाहिए, जिनके लिए पढ़ाई होना चाहिए, जिनके लिए यूनिवर्सिटीज चलना चाहिए, मीना भाई उनको रिप्रेजेंट करते हैं।
रामजल चाहते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ गार्ड की नौकरी भी जारी रखें क्योंकि उन्हें अपना परिवार भी चलाना है।
वैसे तो मैं मैडम मतलब नौकरी करने का प्लान है क्योंकि बच्चे सब यहीं रह रहे हैं, अगर नहीं करने देंगे तो फिर मुझे छोड़नी पड़ेगी नौकरी।
इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि रामजल उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा और उम्मीद की वो रोशनी है जो कोई मुश्किल मकसद हासिल करना चाहते हैं। सिंधुवासिनी, BBC दिल्ली।
अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शूटिंग की दुनिया में, जहां पर जर्मनी में खेला जा रहा है जूनियर विश्व कप और भारत के विजयवीर सिद्धू ने ISSF जूनियर विश्व कप में 3रा गोल्ड मेडल हासिल किया। ये स्वर्ण पदक उन्होंने पुरुष वर्ग के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में हासिल किया। उनकी टीम में राज कंवर सिंह संधू और आदर्श सिंह भी मौजूद थे। ISSF जूनियर विश्व कप में भारत पहले पायदान पर पहुंच गई है और 3रे दिन 7 गोल्ड के साथ 16 मेडल्स अपने नाम कर लिए हैं। तो वहीं क्रिकेट के मैदान पर वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन 19 जुलाई को होगा। महेंद्र सिंह धोनी इस टूर के लिए उपलब्ध रहेंगे या नहीं, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। टीम के कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में रोहित शर्मा कप्तानी कर सकते हैं। चोटिल ओपनर शिखर धवन की उपलब्धता के बारे में बोर्ड को अभी तक कोई जानकारी नहीं है। भारत का वेस्टइंडीज दौरा 3 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें दोनों टीमें 3 वनडे, 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेलेंगी।
चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में उस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों की निंदा की गई है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 काली महिला सांसदों से कहा था कि वो अपने देश वापस लौट जाएं। उर्जुला फोन डे लायन यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। वो जर्मनी की रक्षा मंत्री भी रही हैं। अमेरिका में ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान अपनी मिसाइलों को लेकर किसी भी देश से बातचीत नहीं करेगा। दरअसल इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करना चाहता है। अमेरिका ने म्यांमार के चार शीर्ष जनरल पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। अमेरिका के मुताबिक इन जनरलों ने रोहिंग्या मुस्लिमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन किए। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक ताज़ा खबरों के लिए आपके साथ है bbchindi.com का पन्ना। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें इजाज़त। नमस्कार।